तो कुमारिल भट्ट के मत की चर्चा चल रही है अपने पाठ में। पिछले पाठ में कहा था कि ज्ञान ग्राहक से अतिरिक्त सामग्री की अपेक्षा न होने के कारण प्रामाण्य में स्वतस्त होता है, अर्थात प्रामाण्य का स्वतः ग्रहण होता है। इससे आगे की बात आज पढ़ेंगे कि ज्ञानं च प्रवृत्ते है पूर्वमेव गृहीतम्। कहा कि व्यक्ति जो किसी कार्य में प्रवृत्त होता है उस प्रवृत्ति से पहले ही जो है ज्ञानम गृहीतम्, ज्ञान का ग्रहण हो जाता है। आपको याद होगा हमने ज्ञान के तीन कंडीशन की बात बताई थी, ज्ञान की उत्पत्ति वाली अवस्था, ज्ञान के ग्रहण वाली अवस्था, ज्ञान के ग्रहण, ग्रहण माने ज्ञान, ज्ञान के ज्ञान वाली अवस्था। ज्ञान का ग्रहण होना मतलब ज्ञान का ज्ञान होना। और तीसरी अवस्था है कि ज्ञान में रहने वाला जो प्रामाण्य है उस प्रामाण्य का ग्रहण होना। यहाँ भी ग्रहण का अर्थ ज्ञान ही हो गया, तो तीन हो गया, ज्ञान का उत्पन्न होना, दूसरा ज्ञान का ज्ञान होना, तीसरा ज्ञान में रहने वाले प्रामाण्य का ज्ञान होना। अब इन तीनों स्थिति को मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझा दूं। अब जैसे जलादि ज्ञान है, तो जब जलादि ज्ञान उत्पन्न होता है, आप जो है यहाँ खड़े हैं और सामने जो है थोड़ी दूर पर सरोवर है, सरोवर में आप पानी की लहर को देखते हैं अपनी चक्षुरिंद्रिय के द्वारा, वह कनेक्ट होता है और आप जब उसको जब वहाँ पर जलादि का ज्ञान होता है तो वह है ज्ञान की उत्पत्ति अवस्था, माने ज्ञान का उत्पन्न होना वो है। देखने पर जो ज्ञान होता है वह हो गया ज्ञान का ज्ञान की उत्पत्ति। अब इसके बाद आप अब दूसरी अवस्था में आ जाइए कि ज्ञान का ग्रहण होना, माने ज्ञान का ज्ञान होना। ये ज्ञान का ज्ञान होना कैसे होता है कि मया जलादि ज्ञातम अथवा अहम जलादिम जानामि। ये जो ज्ञान है ये है ज्ञान का ग्रहण होना, यह है ज्ञान का ज्ञान होना, मैं जल आदि को जानता हूँ। इस तरह से जो ज्ञान होता है यह है द्वितीय ज्ञान की अवस्था, अर्थात ज्ञान का ज्ञान होना, ज्ञान का ग्रहण होना। पहली अवस्था क्या हो गई कि जब इंद्रिय के द्वारा, इंद्रिय और विषय का जब संयोग होता है, जब चक्षुरिंद्रिय का जल के साथ संयोग होगा और उस समय में क्या होगा कि जल का ज्ञान उत्पन्न होगा, यह है प्रथम अवस्था। द्वितीय अवस्था है कि जब जल ज्ञान उत्पन्न हो गया उसके बाद उस जल ज्ञान का ज्ञान मुझे होता है। तो जल ज्ञान का ज्ञान होता है उसको हम कैसे कहेंगे वाक्य के द्वारा, तो अगर कर्मवाच्य में कहना चाहें तो कहिए कि मया जलादि ज्ञातम, अथवा कर्तृवाच्य में कहना चाहिए चाहें तो कहिए कि अहम जलादिम जानामि। तो इस तरह से ये जो ज्ञान होता है इसी का नाम है ज्ञान का ग्रहण होना, ज्ञान का ज्ञान होना। और इसी की सामग्री जो होती है, इसी का सामग्री माने कारण, इसकी का जो कारण होता है उसी को ज्ञान ग्राहक सामग्री कहते हैं। जो न्याय वाले कहते हैं ना अनुव्यवसाय से ज्ञान का ग्रहण होता है, तो ये जो दूसरा वाला ज्ञान है कि अहम जलादिम जानामि अथवा मया जलादि ज्ञातम, इस तरह से जो ये जो दूसरा ज्ञान का ज्ञान होना है ये उनके यहाँ अनुव्यवसाय से होता है, जो कि मीमांसकों के यहाँ ज्ञातता नाम के धर्म से होता है। ठीक है, तो पहली अवस्था में क्या जलादि ज्ञान हुआ, कैसे हुआ, जब चक्षुरिंद्रिय के साथ जल का संयोग होगा तो उसके समय में जलादि ज्ञान उत्पन्न होगा। फिर उसके बाद होगा कि अहम जलादिम जानामि अथवा मया जलादि ज्ञातम, इस तरह से जो ज्ञान होगा ये ज्ञान का ग्रहण होना हो गया, ये दूसरी अवस्था हो गई। और तीसरी अवस्था क्या होती है कि मया जलादि ज्ञानम प्रमितम, ये कर्मवाच्य में अगर कहना चाहें मया जलादि ज्ञानम प्रमितम, कर्तृवाच्य में अगर कहना चाहें तो कहेंगे कि अहम जलादिम प्रमिनोमि, अहम जलादिम प्रमिनोमि, माने मैं जलादि ज्ञान को प्रमित करता हूँ, माने प्रामाणिक रूप में समझता हूँ। इस तरह से ये तीन अवस्था होती है, उत्पत्ति अवस्था, ग्रहण अवस्था और ज्ञान ग्रहण अवस्था और प्रामाण्य ग्रहण अवस्था। ठीक है, चलिए फिर पंक्ति में जाते हैं। पंक्ति में कहते हैं कि ज्ञानम च प्रवृत्तेह पूर्वम एव गृहीतम, कि जलादि का जो ज्ञान है वह प्रवृत्ति से पूर्व में ही गृहित हो जाता है। किसके द्वारा गृहित होता है? ज्ञान ग्राहक सामग्री के द्वारा जलादि ज्ञान गृहित हो जाता है। और गृहित होने के बाद फिर वह उसी समय में उसे प्रामाण्य का भी ग्रहण हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों की सामग्री एक ही है ना, ज्ञान ग्राहक सामग्री भी ज्ञातता है और प्रामाण्य ग्राहक सामग्री ही ज्ञातता है। तो जब कारण रहेगा तो कार्य तो होना ही होना है। तो जब ज्ञातता नाम का धर्म कारण विद्यमान है तो उसी धर्म से ज्ञान का भी ग्रहण हो जाएगा और ज्ञान के प्रामाण्य का भी ग्रहण हो जाएगा। तो वही कह रहे कि ज्ञानम च प्रवृत्ति पूर्वम एव गृहीतम, जलादि का ज्ञान जो है वह प्रवृत्ति से पहले ही गृहित हो जाता है। कथम अन्यथा, अगर हम कहेंगे कि नहीं जी प्रवृत्ति पहले होती है और ज्ञान जो है वह ज्ञान का ग्रहण बाद में होता है, तो ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि ऐसा अगर कहेंगे तो प्रवृत्ति से पहले व्यक्ति को जो प्रामाण्य और अप्रामाण्य का संदेह होता है वो कैसे होगा? संदेह होने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए अंधेरे में आप थोड़ी दूर पर देखते हैं तो लगता है कि ये जो है ना ठूठा पेड़ है अथवा कोई व्यक्ति है, ऐसा आपको संदेह होता है जब दूर से देखते हैं प्रकाश के अभाव में। तो जिसको ठूठा पेड़ का ज्ञान होगा अथवा व्यक्ति का ज्ञान होगा उसी को तो संदेह होगा ना, वो देखने पर, वो छाया देखने पर कि ये ठूठा पेड़ है या ये व्यक्ति है। तो संदेह होने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है। तो वही कहते हैं कि प्रवृत्ति से पहले ज्ञान का ग्रहण स्वीकार करना पड़ेगा। अगर प्रवृत्ति से पहले ज्ञान के ग्रहण को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर जो व्यक्ति को संदेह होता है, ज्ञान विषयक संदेह होता है कि हमारा ज्ञान प्रामाणिक है या हमारा ज्ञान प्रामाणिक नहीं है, यह संदेह कैसे होगा? इसीलिए इसी आधार पर ये सिद्ध करते हैं या जो प्रामाण्य और अप्रामाण्य का ज्ञान में संदेह होता है, इस संदेह के आधार पर ही यह साबित होता है कि प्रवृत्ति से पहले ज्ञान का ग्रहण हो जाता है। क्लियर? तो ज्ञानम च प्रवृत्ति पूर्वम एव गृहीतम, कथम अन्यथा प्रामाण्य प्रामाण्य संदेहो पिस्यात्, ज्ञान जो है प्रवृत्ति से पहले ही गृहित होता है। कथम अन्यथा, अन्यथा अर्थात अगर पहले गृहित न हो ज्ञान तो फिर उस ज्ञान में प्रामाण्य और अप्रामाण्य का संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन वह संदेह तो होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रवृत्ति से पूर्व ज्ञान का ग्रहण होता है। फिर आगे कहते हैं अनधिगते धर्मिणी संदेह अनुदयात, ताकि क्यों ये आपने जो कहा ना प्रामाण्य प्रामाण्य संदेह हो पी स्यात, माने प्रामाण्य और अप्रामाण्य संदेह जो होता है वह नहीं होगा, ये कैसे कहा? ताकि अनधिगते धर्मिनी संदेह अनुदयात, जहाँ पर धर्मी अनधिगत हो, अनधिगत माने अज्ञात हो, तो धर्मी अगर अज्ञात हो तो वहाँ पर संदेह जो है अनुदय होता है, संदेह नहीं होता है। यहाँ पर धर्मी कौन है? तो ज्ञान जो है वह धर्मी है और संदेह किसका हो रहा है? प्रामाण्य अप्रामाण्य का संदेह हो रहा है। ये प्रामाण्य अप्रामाण्य क्या है? धर्म है। तो जब धर्मी का ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर धर्मी में रहने वाला धर्म का संदेह कैसे होगा? जब मनुष्य का ज्ञान ही नहीं रहेगा तो फिर मनुष्यत्व के बारे में संदेह नहीं हो सकता ना। घट का अगर ज्ञान नहीं होगा तो घट में रहने वाला जो घटत्व धर्म है उस घटत्व धर्म का संदेह नहीं होगा। तो इसीलिए ज्ञान जो धर्मी है उसका ग्रहण होना प्रवृत्ति से पहले आवश्यक है। जब प्रवृत्ति से पहले धर्मी ज्ञान गृहित हो गया फिर धर्मी में धर्म का संदेह उदय होगा, अर्थात ज्ञान में रहने वाला जो धर्म है प्रामाण्य अप्रामाण्य उसका संदेह होगा। तो प्रामाण्य अप्रामाण्य का जो संदेह होता है प्रवृत्ति से पहले, उस संदेह के आधार पर यह सिद्ध होगा कि धर्म में चूंकि संदेह हो रहा है इसीलिए इसका मतलब है कि धर्मी का पता उसको पहले से है, धर्मी के बारे में वो पहले से जानता है। तो इस तरह से प्रवृत्ति बाद में होती है, ज्ञान का ग्रहण जो है वह पहले होता है। आगे कहते हैं तस्मात् प्रवृत्ते पूर्वम एव, इसीलिए प्रवृत्ति होने से पहले ही आपको ज्ञान का ग्रहण मानना होगा। ये तो क्लियर हो गया, क्यों? क्योंकि वही पहले मैं विस्तार में चर्चा कर चुका हूँ, प्रवृत्ति से पहले ज्ञान का ग्रहण होता है, अर्थात ज्ञान का ज्ञान होता है, ये मानना ही पड़ेगा। ये मानेंगे तभी जो है ज्ञान रूपी धर्मी में प्रामाण्य अप्रामाण्य रूपी धर्म का जो है संदेह होना संभव होगा। इस तरह से आपने ये स्वीकार, आप स्वीकार करिए कि प्रवृत्ति बाद में होती है और ज्ञान का ग्रहण पहले होता है, ठीक है? इसको क्लियर कर लिया कि पहले जो है ज्ञान का ग्रहण होता है, पहले ज्ञान का ज्ञान होता है। अब देखिए, जब ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान का ग्रहण हो जाएगा, तो कुमारिल के मत में क्या होता है कि ज्ञान का जो विषय है उसमें ज्ञातता नाम का धर्म जो है वह उत्पन्न होता है। अब ज्ञातता क्या है इसको समझिए। ज्ञान तो आप समझते हैं, जैसे जलादि ज्ञान हो गया, और ज्ञात क्या हुआ, तो ज्ञान का जो विषय है उसको कहते हैं ज्ञात। तो जलादि ज्ञान में मैंने बताया हुआ है कि ज्ञान का, जिसका ज्ञान होता है वह ज्ञान का विषय कहलाता है। तो जलादि ज्ञान अगर होता है तो किसका ज्ञान हुआ, जलादि का ज्ञान हुआ ना, तो जलादि ज्ञान का विषय हो गया जलादि। तो ज्ञान का ग्रहण हुआ ना, तो ज्ञान के ग्रहण होने में ज्ञान का विषय क्या है जलादि ज्ञान में, जलादि ज्ञान में जलादि जो है वह विषय है उसमें, तो वही जो विषय है ज्ञान का वही ज्ञात शब्द का अर्थ है। ज्ञातता में दो शब्द है, एक है ज्ञात, दूसरा है ज्ञातता। तो ज्ञात का मतलब हो गया ज्ञान का विषय, और ज्ञातता मतलब ज्ञात में रहने वाला धर्म। अच्छा एक चीज, ज्ञात का मतलब ज्ञान का विषय, तो ज्ञान का विषय जो है ना यहाँ पर वो जलादि तो है ही, जलादि का ज्ञान जो है वो असल में ज्ञात कहलाएगा, क्योंकि ज्ञान का ग्रहण हो रहा है ना, ज्ञान का ज्ञान हो रहा है। इस पर इस स्थिति को आप ऐसे समझिए कि दो अवस्था है, एक तो है जलादि ज्ञान और दूसरा है जलादि ज्ञान का ज्ञान। तो प्रथम अवस्था जो है जलादि ज्ञान, उसमें ज्ञान का विषय हो गया जलादि, लेकिन दूसरी अवस्था जो है जलादि ज्ञान का ज्ञान, ये दूसरा वाला जो ज्ञान है इसका विषय क्या होगा, तो जलादि ज्ञान विषय हो जाएगा, क्योंकि जलादि ज्ञान का ही ज्ञान हो रहा है ना। हाँ, तो इस तरह से ज्ञात का मतलब हो गया ज्ञान का विषय, ज्ञात मतलब द्वितीय जो ज्ञान है उस ज्ञान का विषय कौन है, प्रथम ज्ञान माने जब प्रथम जलादि ज्ञान जो है वो है, तो ज्ञात हो गया जलादि ज्ञान। और उस जलादि ज्ञान में रहने वाला जो ता, ता माने धर्म, उसका नाम है ज्ञातता। तो जब ज्ञान का ग्रहण होता है तो फिर ज्ञान के विषय में, जलादि ज्ञान में एक ज्ञातता नाम का धर्म उत्पन्न होता है, ऐसा कुमारिल भट्ट का कहना है। वही कह रहे हैं कि तस्मात, मान तस्मात माने पूर्व में जो बताया गया है कि प्रामाण्य अप्रामाण्य संदेह जो होता है, धर्म का जो संदेह होता है उसके आधार पर, प्रवृत्तेह पूर्वम एव, प्रवृत्ति से पहले ही ज्ञातता नाम का धर्म जो है उत्पन्न होता है ऐसा मानना है। अर्थात ज्ञान का ग्रहण पहले हुआ, तो जब ज्ञान का ग्रहण हुआ तो उस समय में, अर्थात द्वितीय जो ज्ञान है, जलादि ज्ञान का जो ज्ञान है, इसमें जो द्वितीय ज्ञान है जलादि ज्ञान का ज्ञान, इस ज्ञान का जो विषय है वह कौन होगा, प्रथम जलादि ज्ञान जो है वह हो गया ज्ञान का विषय, उस जलादि ज्ञान में ज्ञातता नाम का धर्म जो है उत्पन्न होगा, ठीक है? अब देखिए कि धर्म उत्पन्न होगा। अच्छा धर्म जो है बिना धर्मी के रह सकता है क्या, नहीं रहे, घटत्व बिना घट के तो नहीं रहेगा ना, मनुष्यत्व बिना मनुष्य के तो नहीं रहेगा। ऐसे ही जलादि ज्ञान का जो ज्ञान है वह बिना जलादि ज्ञान के रह सकता है क्या, नहीं रह सकता है। तो उसमें जब जलादि ज्ञान का ज्ञान हुआ तो फिर द्वितीय जो ज्ञान है जलादि ज्ञान का ज्ञान, उस ज्ञान के विषय में, उस ज्ञान का विषय कौन है, जलादि ज्ञान, उसमें ज्ञातता नाम का जो है एक नवीन धर्म उत्पन्न होता है। और वह जो ज्ञातता नाम का धर्म उत्पन्न हुआ उस धर्म को देख करके धर्मी का अनुमान होता है, ये न्याय की भाषा में, लेकिन मीमांसा की भाषा में ज्ञातता नाम के धर्म को देख करके धर्मी जो ज्ञान है उसकी अर्थापत्ति होती है। और उस अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञान होता है। बिना धर्म माने बिना धर्मी का धर्म हो नहीं सकता, इसलिए कहते हैं यहाँ पर देखिए कि ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्ति प्रसूत अर्थापत्या ज्ञाने गृहित, माने ज्ञाने गृहित, ज्ञान जो है वह गृहित होता है। कैसे ज्ञान गृहित होता है? तो ज्ञातता के द्वारा ज्ञान गृहित होता है। क्यों? तो ज्ञातता धर्म है और जलादि ज्ञान जो है वह उसका विषय है, वह उसका ग्रहण होता है। कैसे ग्रहण होता है? तो अन्यथा अनुपपत्ति प्रसूत अर्थापत्ति के द्वारा उसका ग्रहण होता है। ये अन्यथा अनुपपत्ति प्रसूत अर्थापत्ति क्या है? तो मैंने बताया था जैसे पीनोयम देवदत्तो दीवान भुंगते, बिना रात्रि भोजन के देवदत्त में पीनत्व जो है अनुपपन्न है, अनुपपन्न है माने असंभव है, इसलिए वहाँ रात्रि भोजन की अर्थापत्ति होती है। इसी तरह से ज्ञातता नाम का जो धर्म है वह बिना ज्ञान के संभव, बिना ज्ञान रूपी धर्मी के संभव नहीं है, इसलिए ज्ञातता रूपी धर्म को देख करके ज्ञान का ग्रहण हो जाता है, ज्ञान का ज्ञान हो जाता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञान होना। इसी बात को आप पंक्ति में देखिए कि ज्ञातता जो नवीन धर्म, ये ज्ञातता नवीन धर्म किसमें उत्पन्न हुआ? ज्ञान का जो विषय है, मन द्वितीय ज्ञान का जो विषय है उसमें ज्ञातता नाम का धर्म उत्पन्न हुआ और उस ज्ञातता नामक धर्म को देख करके अन्यथा अनुपपत्ति माने बिना धर्मी के उसकी अनुपपत्ति होगी माने वह असंभव हो जाएगा, इसीलिए अर्थापत्ति के द्वारा वहाँ पर ज्ञाने गृहित, ज्ञान गृहित होता है माने ज्ञातता के द्वारा ज्ञान गृहित हो जाता है। और ज्ञान गतम प्रामाण्यम अपि अर्थापत्ये गृह्यते, तो ज्ञान का भी ग्रहण हो गया ज्ञातता के द्वारा और ज्ञान में रहने वाला जो प्रामाण्य है उसका भी ग्रहण जो है वह अर्थापत्ति के द्वारा ही हो जाता है, क्योंकि प्रामाण्य भी जो है क्या है वो धर्म है और धर्मी क्या है? ज्ञान है। तो जैसे धर्म को देख करके धर्मी का अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञान होता है, उसी तरह से ज्ञान रूपी धर्मी को देख करके प्रामाण्य रूपी धर्म का भी जो है ज्ञान हो जाता है अर्थापत्ति के द्वारा। ततः पुरुषः प्रवर्तते, और उसके बाद जो है पुरुष की प्रवृत्ति होती है। न तु प्रथमं ज्ञान मात्रं गृह्यते, बल्कि ऐसा नहीं है कि पहले ज्ञान मात्र का ही ग्रहण होता है। ततः प्रवृत्ति उत्तर काले फल दर्शनेन ज्ञानस्य प्रामाण्यम अवधार्यते, कि पहले ज्ञान मात्र होता है और फिर प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति के बाद जब फल दर्शन होता है, जल आदि का लाभ होता है, उसके बाद ज्ञान के प्रामाण्य का अवधारण होता है, ऐसा नहीं है। बल्कि एक ही समय में एक कालावच्छेदेन ही जो है व्यक्ति में ज्ञान का ग्रहण भी होता है और ज्ञान के प्रामाण्य का भी ग्रहण होता है, फिर जाकर के वह व्यक्ति किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, यही कुमालिल भट्ट का मत है। तो आज का पाठ यहीं पर स्थापित करते हैं।